नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से अधिकतम 10% कम रखने की बात कही। सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के 5 शहरों में आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे। लोकसभा की कार्यवाही हरियाणा में एक ट्रस्ट के भूमि अधिग्रहण मामले पर शोर शराबे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में 15 दिन तक अनशन करने की अनुमति दी। खाद्य मुद्रास्फीति की दर 6 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 0.87% गिरी। सेंसेक्स में शुरुआती बढ़त के बाद दोपहर बाद के कारोबार में 250 से अधिक अंकों की गिरावट तथा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लंदन के कैनिंगटन ओवल में। दोपहर समाचार में राजेंद्र चुग के साथ मैं हरिसंध हूं। इस अंक में आप सामाजिक क्षेत्र पर समाचार फीचर भी सुनेंगे। पहले समाचार राजेंद्र चुग से।
उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला दिया कि अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से अधिकतम 10% कम होना चाहिए। न्यायमूर्ति आरवी रविन्द्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योग्यता का मापदंड सामान्य वर्ग के पिछले छात्र के दाखिले के आधार पर नहीं तय किया जाना चाहिए, लेकिन पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस शिक्षा सत्र में विश्वविद्यालयों में जो दाखिले हो चुके हैं उन्हें न छेड़ा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों के अभाव में सीटें खाली हैं वे सामान्य वर्ग के छात्रों से भर दी जाएं। उच्चतम न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों में इस निर्णय के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के कोटे की सीटों पर प्रवेश की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी। न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण आईआईटी मद्रास के एक पूर्व प्रोफेसर पीवी इंद्रसिंह की याचिका पर दिया है। उन्होंने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का कोटा लागू करने में अनियमितताओं के मद्देनजर न्यायालय से निर्देश मांगे थे। सीबीआई ने आज वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और कडप्पा के सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे। 5 शहरों हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में ये छापे एक साथ मारे गए। सीबीआई की 2 टीमों ने जगति पब्लिकेशंस के दफ्तरों पर छापे मारे। जगति पब्लिकेशंस, साक्षी तेलुगु दैनिक का प्रकाशन और साक्षी टीवी चैनल चलाती है। भारतीय सीमेंट के कार्यालयों पर भी छापे मारे गए। सीबीआई की टीमें जगनमोहन रेड्डी के रिश्तेदारों के घरों पर भी छानबीन कर रही हैं। सीबीआई ने जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के घरों पर भी छापे मारे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीआई के अधिकारी मैट्रिक्स कंपनी के मालिक निम्मागढ़ प्रसाद के घर की तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में काफी पैसा लगाया है। लोकसभा की कार्यवाही हरियाणा में एक ट्रस्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर शोर शराबे के कारण पहले 12 बजे तक और फिर दिन में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई भाजपा के सदस्यों ने प्रश्नकाल स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष ने इन सदस्यों से कहा कि वे प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन उत्तेजित सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए जिस पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और भाजपा के सदस्य नारेबाजी करते रहे। पीठासीन अधिकारी के शांति बनाए रखने के बार बार अनुरोध के बावजूद शोर शराबा जारी रहा जिस पर कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने बुंदेलखंड का मुद्दा उठाने की कोशिश की जिस पर सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए 12 बजे तक स्थगित की गई। इन सदस्यों का आरोप था कि इस क्षेत्र के लिए केंद्र द्वारा घोषित पैकेज में सभी केंद्रीय योजनाओं को मिला दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए 72 करोड़ 66 लाख रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। 12 बजे के बाद सदन में सामान्य कामकाज शुरू हो गया। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रश्नकाल को चलने नहीं देना चाहती और रोजाना गैर जरूरी मुद्दे उठाकर संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रही है। सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए 71 अतिरिक्त अदालतें बना रही है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ऐसी 30 अदालतें पहले ही काम कर रही हैं। राज्य सरकार ने भी ऐसे मामलों को निपटाने के लिए 46 विशेष अदालतें बनाई हैं। श्री खुर्शीद ने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में गैस की आपूर्ति में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कंपनियों को नई पाइपलाइनें बिछाने का अधिकार दिया है। रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कृष्णा गोदावरी थाले से दक्षिणी राज्यों को जोड़ने वाली 3 पाइपलाइनें बिछाने का अधिकार दिया गया है। एक अन्य कंपनी पीएनजीआरबी को 3 अन्य पाइपलाइनें बिछाने का अधिकार दिया गया है जिनसे देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि इन पाइपलाइनों से उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस सप्लाई की जाएगी जहां अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्यसभा ने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही आज आगे शुरू की। महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद सदन में मत विभाजन होगा। अपना जोरदार बचाव करते हुए श्री सेन ने उन पर लगाए गए गलत आचरण और पैसे की हेराफेरी के आरोपों को उन्हें हटाने की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा बताया। सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधीश को उदाहरण पेश करना चाहिए, न कि तकनीकी नुक्ते निकालकर अपने आप को कानून के दंड से बचाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने रखा था। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में मत विभाजन से और 2/3 बहुमत से पास करना होगा। सरकार लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक अलग विधेयक लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार ने इस महीने की 4 तारीख को लोकसभा में लोकपाल विधेयक 2011 पेश किया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में उच्च पदों पर बैठे लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की शिकायतें निपटाने के लिए लोकपाल की व्यवस्था है। इसका अध्यक्ष न्यायपालिका से होगा, जो कि भारत का अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, एक जाने माने विधिवेत्ता और एक गण्यमान्य नागरिक होंगे। श्री नारायण स्वामी ने बताया कि सरकार ने राजनीतिक दलों से लोकपाल विधेयक के मसौदे पर विचार मांगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले के सिलसिले में करीब 384 करोड़ रुपए के कथित विदेशी मुद्रा घोटाले के आरोप में 2 लूप कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि निदेशालय ने इससे पहले लूप मोबाइल इंडिया लिमिटेड और लूप टेलीकॉम लिमिटेड पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फेमा के उल्लंघन के कई आरोप लगाए थे। प्रवर्तन निदेशालय इस घोटाले के सिलसिले में शीर्ष दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतें पहले ही दर्ज कर चुका है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर के क्षेत्र के देशों के लिए सुनामी चेतावनी सेवा बुलेटिन शुरू करने पर विचार कर रहा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि इस साल अक्टूबर से इन देशों में सुनामी बुलेटिन शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के बीच सुनामी चेतावनी के लिए हॉटलाइन लगाई जाएगी। आकाशवाणी से आप हर घंटे समाचार बुलेटिन सुन सकते हैं। मोबाइल फोन पर ताजा समाचार जानने के लिए मैसेज बॉक्स में टाइप करें न्यूज और भेज दें 5676744 पर। समाचारों की अगली कड़ी के साथ हरिसंधू।
समाज सेवी अन्ना हजारे की टीम और दिल्ली पुलिस के बीच आज सवेरे इस बात पर सहमति बन गई कि अन्ना नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 15 दिन के लिए अनशन कर सकते हैं। यह सहमति दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीके गुप्ता और अन्ना हजारे के समर्थकों के बीच बातचीत के दौरान बनी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अनशन की अनुमति जेपी पार्क में 3 दिन के लिए दी जा सकती है और पार्क में 5,000 से ज्यादा अन्ना समर्थक मौजूद न हो। पुलिस ने इसके साथ कुछ और पाबंदियां भी लगाई थीं। आज की सहमति के बाद ये सारी पाबंदियां नहीं रहेंगी। मंगलवार को अन्ना हजारे को छोड़ने के फैसले के बाद 40 घंटे से भी अधिक की बातचीत के नतीजे में ये सहमति सामने आई। रिहा किए जाने के आदेश के बावजूद अन्ना हजारे ने बाहर आने से मना कर दिया और जेल में ही अपना अनशन जारी रखा। अपने सहयोगियों के जरिए वो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे थे। उधर रामलीला मैदान को तैयार करने का काम चल रहा है। मैदान की सफाई की निगरानी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त केएस मेहरा कर रहे हैं। उन्होंने एक उपायुक्त को इस काम पर लगा दिया है। पुलिस भी मैदान की पूरी जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैदान में कोई संदेहास्पद वस्तु न हो। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ समुचित संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इनमें कुछ हथियारबंद पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। टीम अन्ना ने दिल्ली पुलिस को यह लिखकर दिया है कि वो वर्तमान नियमों का पालन करेंगे और समर्थकों की भीड़ रामलीला मैदान की क्षमता से ज्यादा नहीं होगी। रामलीला मैदान में लगभग 25,000 लोग आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने आकाशवाणी को बताया कि टीम अन्ना ने 2 पृष्ठों के इस वचन पत्र में कहा है कि अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अनशन की अनुमति 2 सितम्बर तक दी गई है। इस वचन पत्र में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, भीड़ आसपास की सड़कों पर नहीं जाएगी, प्रदर्शनकारी यातायात पुलिस के साथ सहयोग करेंगे, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल उच्चतम न्यायालय के निर्देश द्वारा निर्धारित समय सीमा यानी 10 बजे के बाद नहीं होगा। अन्य शर्तों में पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, मोबाइल टॉयलेट और समुचित रोशनी का प्रबंध करना भी शामिल है। कोई व्यक्ति लाठी या कोई अन्य हथियार लेकर नहीं आएगा। कोई भड़काऊ नारे नहीं लगाए जाएंगे और न ही भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल के 200 मीटर के दायरे में कोई उत्तेजक नारा नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। अन्ना हजारे और उनके साथ अनशन करने वाले लोगों की चिकित्सा जांच सरकारी डॉक्टर दिन में 3 बार करेंगे। टीम अन्ना ने उच्चतम न्यायालय के 16 अप्रैल 2009 के आदेश में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने का भी वचन दिया है। ये वचन पत्र दिल्ली पुलिस के मध्य जिले के DCP को दिया गया है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी आज पुणे जिले में मावल में हाल ही में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने गए। उन्होंने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। इस महीने की 9 तारीख को मावल तालुक में औद्योगिक शहर पिंपरी चिंचवाड़ को पावना बांध से पानी की आपूर्ति करने की बंद पाइपलाइन परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से गोली चलाने से 3 किसान मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। कोलकाता में सीआईडी पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुशांत घोष के घर से मानव कंकाल मिलने के आरोपों की जांच कर रही है। सीआईडी के अधिकारियों के घर पर छापे के दौरान कुछ कारतूस और खुफिया कैमरा भी मिला था। सीआईडी ने कल रात इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। असम में 2 और भूमिगत गुटों के साथ जल्द ही शांति वार्ता शुरू की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कल दिसपुर में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन गुटों में दीमा हालम दावगाह ज्वेल गारलोसा गुट और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड रंजना डायमेरी गुट शामिल है। उन्होंने कहा कि अल्फा के परेश बरुआ के साथ भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। असम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट के 48 घंटे के राज्यव्यापी बंद के कारण आज दूसरे दिन भी 9 जिलों में जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के जिलों कोकराझार, उदालगुरी, बक्सा और चिरांग में पूरी तरह से बंद है।
सुनीतपुर, डोरांग, बरपेटा, बंगाईगांव और नलबारी जिले में बंद का आंशिक प्रभाव पड़ा है। बंद के कारण राज्य के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 52 सहित अन्य सड़कों में वाहनों के आवागमन बाधित हुआ है। दुकान, बाजार, शिक्षण प्रतिष्ठान और सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, बैंक आदि भी बंद से प्रभावित हुआ है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद प्रभावित इलाकों में रेल सेवा निर्धारित समय पर चलाए है। रमणीकांत शर्मा, आकाशवाणी गुवाहाटी।
खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति की दर 6 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान गिरकर 9.03% ही रह गई। इसके पहले के हफ्ते में यह 9.90% थी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं के दामों में कमी के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ईंधन के मूल्यों में इस सप्ताह के दौरान 13.13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गैर खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 16.07% हो गई, जो इसके पहले के हफ्ते में 15.05% थी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आशा व्यक्त की है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति सामान्य रहेगी और 5.5% तक आ जाएगी। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुखर्जी ने कहा कि अच्छे मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी। बम्बई शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स में 76 अंकों से भी अधिक की बढ़त रही, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। अब से कुछ ही देर पहले सेंसेक्स 297 अंक की गिरावट के साथ 16,544 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92 अंक गिरकर 4,963 पर आ गया। एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख रहा। जापान के निक्केई में 0.42% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.12% की गिरावट आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे कमजोर हो गया। एक डॉलर की कीमत 45.70 रुपये बोली गई। उधर एशियाई बाजारों में कच्चे तेल के भाव गिरे। सितंबर की डिलीवरी के लिए न्यूयॉर्क का लाइट स्वीट क्रूड 33 सेंट सस्ता होकर $87.25 प्रति बैरल हो गया। अक्टूबर की डिलीवरी के लिए लंदन के ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड की कीमत में भी 30 सेंट की गिरावट आई और एक बैरल $110.30 का हो गया। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई और गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमारे गोरखपुर संवाददाता ने खबर दी है कि मुरादाबाद में रामगंगा खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है, जबकि लखीमपुर में पलियां कला में शारदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। करीब 200 और गांव में बाढ़ का पानी भर गया है।
नेपाल से प्रदेश की विभिन्न नदियों में आ रहे पानी के कारण घाघरा, शारदा और इसकी सहायक नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर है, लेकिन अब इसका जलस्तर स्थिर हो गया है। नदियों के किनारे की आबादी ऊंचे स्थानों पर चली गई है, लेकिन तटबंधों पर रह रहे लोगों की परेशानियां रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण बढ़ गई हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन लोगों को खाद्य सामग्री और दवाएं देने के साथ साथ मवेशियों के टीकाकरण का कार्य भी कर रहा है। सलमान हैदर, आकाशवाणी समाचार।
उधर उत्तराखंड में भारी वर्षा से 200 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता के अनुसार सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कुमाऊं डिवीजन के पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और गढ़वाल डिवीजन के कई स्थान आज चौथे दिन भी राज्य के अन्य भागों से कटे रहे।
प्रदेश के इन राजमार्गों के साथ ही चारधाम यात्रा रूट पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के फंसे होने की खबर है। जगह जगह रास्ते बंद होने से फल, सब्जी, घरेलू गैस के साथ ही अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति पर्वतीय इलाकों में पिछले 4 दिनों से बंद है। इसके अलावा कई स्थानों पर बिजली पानी का भी संकट पैदा हो गया है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को खराब मौसम को देखते हुए यात्रा पर फिलहाल न आने की सलाह दी है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
असम के धेमाजी जिले में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही वर्षा से बाढ़ की स्थिति और बदतर हो गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को गई नदी की बाढ़ में बह गए तीन और लोगों के शव बरामद किए। पुलिस लापता लोगों की तलाश जारी रखे हुए है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाल ही में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। कल रात डिहरी गांव में एक बच्चा बाढ़ में बह गया।
असम के धेमाजी, शनितपुर, जोरहाट और धुबरी जिले के 327 गांव के लगभग 2.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालांकि तीन जिलों की स्थिति में काफी सुधार हुई है। धेमाजी जिले में स्थिति लगातार चौथे दिन भी गंभीर बनी हुई है। धेमाजी में अब तक 1,55,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत के साथ सवाराजान में आज सुबह से सड़क यातायात बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा सीसी बरगांव टोकोमरी में दो आंगन पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहे है। इसके निर्माण शनिवार तक पूरा होने की उम्मीद है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
और अब पाकिस्तान, जहां कराची में पिछले दो दिन से जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। कल आधी रात से ही गोलीबारी और हिंसक घटनाओं में और 22 लोगों की जान गई। मृतकों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक पूर्व सदस्य वजा करीम दाद भी शामिल हैं। उन्हें लियारिया में एक रेस्टोरेंट में गोली मार दी गई। इस गोलीबारी में चार लोग मारे गए और तीन घायल हो गए। कराची के भीमपुरा इलाके में हथगोलों से किए गए पांच हमलों में चार लोग मारे गए और सात घायल हो गए। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। इस साल कराची में हिंसा में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में विभिन्न परिवहन संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और लंबी दूरी की टैक्सी सेवाएं नहीं चल रही। परिवहन संगठनों ने सरकार के सामने 41 मांगों की सूची रखी है, जिनमें किराए में वृद्धि, सरकारी संगठनों को टैक्सी खरीदने के लिए कस्टम शुल्क में छूट देने और एक अलग परिवहन मंत्रालय बनाने की मांगें शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आज से लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। पहले तीन मैच जीतकर इंग्लैंड ने भारत से टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान छीन लिया है। जहां इंग्लैंड सभी चारों मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, वहीं भारत अपना सम्मान बचाने के लिए खेलेगा। अगर भारत ये मैच भी हार गया तो वो टेस्ट रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के पीछे तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार के खेलने के बारे में संदेह अभी भी बना हुआ है। इससे पहले जहीर खान और हरभजन सिंह भी चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। आकाशवाणी से चौथे टेस्ट मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे राजधानी चैनल, एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मैच के बाकी दिन यह प्रसारण 3:20 से उपलब्ध होगा। अब सुनिए सामाजिक क्षेत्र पर समाचार फीचर।
नमस्कार, समाज कल्याण पर आधारित न्यूज फीचर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय और भावनात्मक सहयोग की जरूरत पर। कैंसर का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, कारण अगर तीसरे या चौथे स्टेज पर इस बीमारी का पता चले तो रोगी के ज्यादा समय तक जीने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। दूसरा यह कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति के इलाज में परिवार को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इन परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट जाते हैं। कैंसर से पीड़ित कृष्णा शुक्ला अपने परिवार के लिए धन कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे जब उन्हें ये बीमारी हुई और अब वे काम करने की स्थिति में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटी 18 वर्षीय निधि का कहना है कि न केवल उनके पास जो भी पैसा था वो उनके पिता के इलाज में लग गया, बल्कि रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़े और आज उनकी हालत ये है कि उनके अपने पास दो वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं है।
2010 में मेरे फादर को कैंसर हुआ। हमें पता नहीं था कि उनको कैंसर है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आ रहा, मैंने हमें ऑपरेट करवाया। वहाँ से बायोप्सी की जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला हमें कि उन्हें कैंसर है। आज मैंने हॉस्पिटल में रेफर किया एम्स के लिए। उनको ऑपरेशन की अटलास डेट दी गई 29 अक्टूबर। उनको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन काफी मेजर हुआ। मेरे फादर की लाइफ में बहुत चेंजेस आए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इन चैप्टर पर पार्ट अपनी लाइफ पर खोया। उनको अपनी लक्ष्मी में उनके जैन बॉ बोन में कैंसर था। डॉक्टर्स ने उनका पूरा लेफ्ट साइड रिमूव कर दिया। उसके बाद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई, बिकॉज हमारी फैमिली में वो ही हमारी अर्निंग पावर थे। मेरी तीन सिस्टर, मेरी उनकी मदर है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था हम ऑलरेडी उनका फर्स्ट ऑपरेशन में कर चुके थे। इवन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक दिन का खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस टाइम मैंने 12th पास आउट किया था, फिर मैं ट्यूशन वगैरह करा के जैसे भी अपने घर की फैमिली का खर्चा देख रही थी। हमारे पास मिडिल क्लास, नाउ आई एम वेरी पुअर।
निधि के परिवार को डीनिप केयर नाम की एक संस्था से मदद मिली। डेलियाइट्स इनिशिएटिव फॉर पैलेटिव केयर यानी कि डीनिप केयर संगठन कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों को हर प्रकार की मदद करता है।
पापा के ऑपरेशन के बाद ही डीनिप केयर का सपोर्ट उनको पता चला। हमारे जो केवी हमजा सर हैं, उनको हमारी फैमिली के बारे में, मेरे फादर के बारे में पता चला। वो हमारे घर आए, मेरे फादर से मिले। उस टाइम उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और वो आज तक हमारी हेल्प कर रहे हैं।
डीनिप केयर के जनरल सेक्रेटरी श्री हमजा का कहना है कि उनका उद्देश्य रोगियों को बेहतर जिंदगी जीने और उनके परिवारों को इस समस्या से जूझने के लिए न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक और दूसरी तरह से मदद करना भी है।
पेशेंट्स के घरों में जाते हैं हम लोग वॉलंटियर्स, बैक टू सैटरडे संडे में जाते हैं हम लोग। कोई भी कैंसर पेशेंट हो वो फील करते हैं सोलिट्यूड, अकेलापन, वो अपना दिल हल्का कर लेते हैं बात करके।
ये संगठन त्रिचम्मा चाकू की भी मदद कर रहा है जो कैंसर से पीड़ित हैं। इनके इलाज के लिए भी डीनिप केयर ने काफी मदद की। त्रिचम्मा का कहना है कि जीवन कितना बहुमूल्य है उसका तभी पता चल पाता है जब आदमी के सामने मृत्यु खड़ी हो।
मैं 55 साल की हूँ, मेरे को पेट में कैंसर था, वो सभी जगह फैल गया था। लंग्स में भी पानी था, पूरा कैंसर सभी जगह में फैल गया था। मेरे ब्रेन में भी उसी वक्त था, लेकिन कोई साइलेंट सिम्टम दिखाया नहीं है। ऑपरेशन के द्वारा मेरा 14 सैंपल्स निकाला, उसमें सभी में कैंसर निकला। और मेरा सिचुएशन तो बहुत ही बुरा था, डॉक्टर्स ने कहा 15 दिन जिएंगे और हम तो मरने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे परिवार में दो बेटे हैं, दोनों बहुत मदद किया और मेरे दोस्त ने बहुत मदद किया। एनजीओ जैसे एक संस्था शुरू किया है, वो बहुत ही ज्यादा मेरा जरूरत से फायदा किया। जीना बहुत ही अच्छा है क्योंकि मृत्यु करीब से देखने के बाद पता पड़ता है जीना कितना अच्छा है।
इस संगठन के साथ काम कर रही एक स्वयंसेवी विद्यार्थी हसना का कहना है कि इस तरह के रोगियों के लिए सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति की जरूरत होती है।
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं पिछले 2.5 साल से मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। हमने एरिया वाइज डिवाइड कराया ड्यूटी सो दैट लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े। एक पेशेंट के पास हम सैटरडे जाते हैं, फिर अगले हफ्ते उसके पास नहीं जाते, थर्ड सेकेंड हफ्ते उसके पास जाते हैं, तो पहले से पता चल जाता है उसको कि हम आ रहे हैं। उनकी जो कहानियां होती है वो सुनने के लिए जाते हैं, तो आधे से ज्यादा रिलीफ वही हो जाते हैं पेशेंट्स को।
दिल्ली स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के निदेशक डॉक्टर आर के ग्रोवर का कहना है कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
हमारे मुल्क में 80% पेशेंट तीसरी या चौथी स्टेज में आते हैं जिसमें जरूर इलाज करने में हमको मुश्किल आती है, पर बाहर के मुल्कों में 80% पेशेंट पहली या दूसरी स्टेज में आते हैं जिसमें इलाज करने में ज्यादा सुविधा होती है। पहली और दूसरी स्टेज में हम 100 में से 80 मरीज ठीक कर सकते हैं और तीसरी चौथी स्टेज में 100 में से मुश्किल 20 ठीक कर सकते हैं, तो इस सिनेरियो को हमने मुल्क में बदला है।
चाहे इस बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, वहीं पर कैंसर जैसे रोगों के लिए सस्ते इलाज के अलावा समाज की ओर से समानुभूति और समर्थन की भी आवश्यकता है ताकि कैंसर से पीड़ित रोगियों के परिवार अपनी स्थिति का सामना बेहतर रूप से कर पाए। फीचर सर्विस के लिए यूके मन्ना के साथ मैं सरिता बरारा।
अभी आप सुन रहे थे सामाजिक क्षेत्र पर समाचार फीचर। कल आप इसी वक्त सुन सकते हैं युवाओं पर आधारित समाचार फीचर। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कल पारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में श्रीमती पाटिल ने कहा कि आने वाला वर्ष उनके लिए सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। आकाशवाणी से हर घंटे समाचार बुलेटिन सुनाए जाते हैं, ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से अधिकतम 10% कम रखने की बात कही है। सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी के 5 शहरों में आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे। सेंसेक्स में शुरुआती बढ़त के बाद दोपहर बाद के कारोबार में 250 से अधिक अंकों की गिरावट आई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।